हरे कृष्णा। तो ये जो पांडव निर्जला एकादशी का व्रत है, इसके पीछे भीम की कहानी है। और आप जानते हैं भीम जो है ना, उनका नाम एक था वृकोदर का मतलब वुल्फ बेलिड। वुल्फ मतलब एक लांडगा ना, के कोल्ला, इसमें से कोई एक एक लोमड़ी लोमड़ी होता है लोमड़ी ऐसा, वो अलग। तो उसके ऐसे कहा जाता है कि उसके पेट में जब भूख लगती है तो वो कंट्रोल नहीं कर सकता, भयंकर भूख लगती है उसको। तो इसलिए भीम को उसका नाम दिया था कि जिसका पेट वृक यानी उस कोल्ले की तरह या लांडगे की तरह है, लोमड़ी की तरह। तो वो कभी भी उपवास नहीं कर सकते। इनफैक्ट जब भी वनवास में थे पांडव लोग, तो वो सब लोग भिक्षा मांगते थे या तो ऐसे ही लेके आते थे भोजन, कंदमूल वगैरह। तो उसमें से आधा हिस्सा भीम को देती थी कुंती देवी और आधा हिस्सा बाकी सब लोग बांट के खाते थे। और ये सब होने के बाद भी भीम हमेशा भूखे रहते थे, मतलब कॉन्स्टेंटली हंगरी स्टार्वेशन। इसलिए जब भी वो एक चक्र में थे, तभी वो वहाँ पर एक राक्षस था, बकासुर। बगला नहीं था वो एक्चुअली राक्षस था। दो बकासुर थे ना, एक बगला था और एक एक्चुअल राक्षस था। तो एक चक्र में जब उनका वनवास था, तभी वो एक घर में रहते थे और परिवार में रहते थे वहाँ पर। तो वो बकासुर वहाँ उसका बहुत आतंक हो गया था। तो बकासुर का ऐसा नियम था कि पहले वो आके किसी को भी खाता था आके, बाद में उन्होंने उसके साथ डिस्कस करके ऐसा किया कि हम लोग टर्न बाय टर्न आपको एक एक परिवार से एक एक व्यक्ति आपको देंगे। तो जिस घर में वो रह रहे थे उस दिन सब लोग रो रहे थे। बोले आप लोग क्यों रो रहे हो? बोले हमारे बेटे को आज हमको नुछावर करना पड़ेगा क्योंकि आप हमारा टर्न है। तो उन्होंने पूछा क्या बात है ये सब क्या, तो डिटेल पूछा उनका। तो कहते हैं कि ऐसा नियम है कि घर का व्यक्ति, एक व्यक्ति जाएगा उसको वो खाएगा, और एक बैलगाड़ी भर के, गाड़ा भर के भोजन साथ में जाएगा। खिचड़ी नहीं प्रभु, अरे खिचड़ी है तो खाली तू जाएगा यार। खिचड़ी नहीं पर पूरे पंच पकवान, ड्रिंक्स, खाना, पकौड़ा, पकवान जो भी है, ऐसा पूरा व्यंजन भर के, पूरा गाड़ा भर के जाएगा। और वो आदमी चला के लेके जाएगा उसको, तो वो बैल को, वो आदमी को और सब खाने को भी खाएगा और शांत रहेगा, ऐसा उसका एक प्रण था। तो जैसे ही ये सुनते हैं ना, भीम बहुत इंस्पायर होते हैं। बोले मैं जाऊंगा, आप चिंता मत करो, हम आपके घर पे रह रहे हैं। तो कुंती देवी ने पहले प्रपोजल रखा कि मैं आप मेरे बेटे को भेजती हूँ। तो उन्हें कहते नहीं, आप हमारे मेहमान हैं, तो कैसे हम आपको भेज सकते हैं? तो हमारा कर्तव्य आपकी सेवा करना, हमारा बेटा ही जाएगा। नहीं तो फिर वो कन्विंस करते कि नहीं, मेरा बेटा जाएगा। भीम इज वेरी इंस्पायर्ड कि बहुत दिन के बाद पेट भर खाने को मिलेगा। इसलिए भीम खुद बैलगाड़ी में बैठता है और पूरा खाना लेके वो पहाड़ की ओर जाने लगता है। जो पहाड़ की ओर जाता है तो पूरा ऑन द वे सब खाना चालू है उसका, कंप्लीट ही इज ईटिंग एवरीथिंग। बाय द टाइम वो पहाड़ तक पहुंचता है तो ऑलमोस्ट खाना समाप्त हो जाता है, केवल ड्रिंक्स बाकी रहते हैं। तो वो जब हंडे भर के ड्रिंक्स रखे उसके अंदर, तो वो राक्षस वहां से आता है और देखता है कि अरे ये तो आदमी बहुत अजीब लगता है, सब खाना खत्म कर दिया उसने। तो वो गुस्से से उस पर अटैक करता है। जब गुस्से से अटैक करता है तो भीम क्या करता है पता है? एक हाथ से उसको पकड़ लेता है, दूसरे हाथ से मटके से वो ड्रिंक पीते रहता है। ऐसा खाली पकड़ के रखता है उसको, और पकड़ के एक हाथ से रखे सारे ड्रिंक पूरे मटके खाली करता है, और फिर उसको सामने लाकर फिर उसका युद्ध होता है, फिर उनको वो मार डालता है बकासुर को। तो इससे वो गांव की जो समस्या है वो भी हल हो जाती है और भीम का भी पेट भर जाता है अच्छी तरह से। ऐसे ही वो एक बार रावण को वाली ने अपने काक में दबा के रखा था 6 महीने के लिए। वो किसी समुद्र के किनारे तपस्या कर रहा था और रावण सबको ऐसा आह्वान देते हुए सब जगह पहुंचता है, चैलेंज करते हुए सबको परास्त करने के लिए दिग्विजय के रूप में। तो वो तभी वाली तपस्या में बैठा रहता है भजन करने में, तो अटैक करता है तो तुरंत उसको यहाँ पर दबा देता है और भजन चालू रखता है। और फिर वो अलग अलग समुद्र के तट पर जाके भजन करता था। तो 6 महीने तक वाली यहाँ से उड़कर उस समुद्र किनारे, वहाँ से उड़कर उस समुद्र किनारे ऐसे तपस्या करते रहता था। तो 6 महीने तक उसने रावण को दबोच के रखा था। रावण रोज रोता था कि छोड़ दो करके। इमेजिन कितना शक्ति रहेगा वाली के अंदर। वो उसको दबोच के अपना तपस्या ठीक से कर रहा था, ध्यान वान लगा के बढ़िया से कर रहा था। छह महीने के बाद बहुत रोया, तो रावण ने उसको वार्निंग देके, रावण ने बाली ने वार्निंग देके उसको बोला वापस नहीं आने का, तो चला गया। ऐसा है, सो मुझे वो याद है कैसे हाथ पकड़ के ऐसा अपना भोजन पूरा किया, बाद में उसको मार डाला। तो वो भीम कभी भी पूरे वनवास के अंदर हमेशा भूखे ही थे वो, हालांकि आधा खाना खाते थे सबका, लेकिन भूखे रहते थे हमेशा, उनका इतना रिक्वायरमेंट था। तो सब भाई एकादशी करते थे, नारद मुनि ने उनको उपदेश किया था एक बार आके, लेकिन भीम नहीं कर पाते थे। तो माता जी ने उनको बोला कि आपको करना चाहिए, उपवास एकादशी का होना चाहिए, बहुत ज़रूरी है, कृष्ण भगवान को प्रसन्न करने के लिए एकादशी उपवास बहुत महत्वपूर्ण है। आप लोगों को शायद पता होगा नहीं होगा, लेकिन एक बार सभी गोपियाँ मिलकर राधा रानी के पास गई और उन्होंने बोला कि कृष्ण आप पर इतने प्रसन्न रहते हैं, इतने आपके वशीभूत रहते हैं, क्या है आपके पास नुस्खा, क्या है सब फॉर्मूला क्या है जिसकी वजह से कृष्ण आपके बस में रहते हैं हमेशा। तो फिर राधा रानी ने उनको पूरा बखान किया हुआ है एकादशी महात्म्य का, और 26 एकादशियों का पूरा वर्णन किया उनको, एक एक नाम के साथ में, हर एक के महात्म्य के साथ में राधा रानी ने स्वयं सभी गोपियों को 26 एकादशियों का गौरव आख्यान सुनाया और कहा कि क्योंकि मैं एकादशी व्रत करती हूँ कृष्ण मेरे वश में रहते हैं। जगन्नाथपुरी और राधा वल्लभ संप्रदाय में एकादशी नहीं होती है, लेकिन फिर उसके बाद में गोपियों ने फिर एकादशी व्रत शुरू किया। और ये कथा जो है गर्ग संहिता में आती है, पूरे डिटेल में आती है कथा। तो उन एकादशियों के संदर्भ देकर कुंती ने कहा कि आपको भी करना चाहिए। उन्होंने कहा नहीं कर सकता हूँ मैं, मेरे लिए पॉसिबल नहीं है, मैं भजन कर सकता लेकिन मैं उपवास नहीं कर सकता। तो माता जी ने उनको कहा कि कम से कम एक साल में एक तो करो, और नारद मुनि ने भी बताया उनको कि अगर आप करोगे तो आपको सारे एकादशी का लाभ मिल सकता है करने का, एकादशी व्रत का। तो फिर बहुत रिलक्टेंटली, मतलब बिल्कुल इच्छा न होते हुए वो हाँ बोल लेते हैं, और उनको इतनी तकलीफ होती है सुबह सुबह, इतनी तकलीफ होती है खाने के बिना। तो माता बोलते हैं चिंता मत करो, आपको अगले दिन बहुत अच्छा अच्छा भोजन खिलाऊंगी मैं। फिर भी उनका मन लगता नहीं उसके अंदर, तो भूख के द्वारा, अग्नि के द्वारा इतनी गर्मी बढ़ती, शरीर में बढ़ती है उनकी ना, पित्त बढ़ता है ना, पित्त से अग्नि बढ़ती है, हीट बढ़ जाती है। तो वो एक चक्र के अंदर आप गए, कितने लोग एक चक्र गए, एक चक्र के अंदर ना जमुना जी प्रकट है, जैसे ब्रज जो है ना वो प्रकट है ना, इधर गौर मंडल में ब्रज प्रकट है, तो वैसे जमुना जी वहां प्रकट हुई है, लेकिन धारा बहुत छोटी है उसकी। तो वो इतनी धारा छोटी होती है और भीम इतने बड़े होते हैं, तो वो क्या करते हैं उसके बीच में लेट जाते हैं, धारा ऐसी बह रही है तो वो ऐसे लेट जाते हैं ताकि तब से उनका जरा अग्नि जो है वो शांत होता रहे, कम से कम जरा उनको अच्छा लगे। तो वो इतने थके रहते हैं बिकॉज ऑफ द हंगर कि उनको जैसे ही वो लेटते हैं कुछ देर बाद उनको नींद लग जाती है, और नींद लगने से क्या होता है वो पूरा जो जल का प्रवाह है ना वो उनके बॉडी पे आके रुकता है ना, वो रुक रहा है तो पीछे ऐसे पानी बढ़ता है बढ़ता है बढ़ता है, बढ़ते जाते हैं पानी, वो इतना पानी बढ़ता है कि उसके दूर एक शंकर जी का मंदिर रहता है, तो शंकर जी के मंदिर तक पानी ऐसा बढ़ने लगता है, उसका लिंग पूरा शंकर जी का जो है शिवलिंग पानी में डूबने लगता है। तो शिव जी परेशान हो जाते हैं, बोले ये क्या हो रहा है, ऐसा कैसे हो रहा है, अचानक पानी कैसे आज बढ़ गया। तो पता करते हैं तो मालूम पड़ता है कि भीम जी सोए हुए हैं और उनके बैकलॉग जो होता है ना पानी का, उससे डैम बन गया, डैम वहां से पानी भर रहा है, तो बोला हम लोग डूब रहे हैं यहाँ पर। तो पार्वती जी आती है, वो भी चिंता करते क्या करना चाहिए, तो पता चलता है कि भीमसेन सो रहे हैं। तो अभी भीमसेन तो भक्त हैं भगवान के, हमारे स्वामी जो है उनके भक्त हैं, वो वैष्णव है उनका, अभी आदर सहित उनको अभी कैसे जगाया जाए, तो जगाएंगे तो भी अपराध हो जाएगा क्योंकि सोए हुए वैष्णव है, उनको नींद लग रही है और भूख लग रही है और परेशान है और सो रहे हैं, तो आप उनको जगा रहे हैं वो भी अच्छा नहीं, क्या करना चाहिए, कुछ आइडिया करना चाहिए। तो फिर पार्वती ने कहा कि मैं गाय बनती हूँ और आप ग्वाला बनो, मैं आप राक्षस बनो सॉरी, और मैं भागूंगी आप मुझे मारने के लिए भागना, और मैं चिल्लाऊंगी तो वो तो क्षत्रिय है, वो तो गौ रक्षक ब्राह्मण रक्षक सबका रक्षण करने का उसका कर्तव्य है, तो वो सो नहीं पाएगा, वो सब सुन के गाय की पुकार सुनकर, मरणांतिक पुकार सुनकर वो सो नहीं पाएगा। तो फिर वो तय होता है, फिर वो गाय बन के राक्षस बन के आने भागने लगते हैं, और गाय जोरों से चिल्लाने लगती है, वहीं जाके मंडराती है उसके आगे पीछे, और राक्षस बनकर शिव जी आते हैं, तुरंत भीम वहां से उठ जाते हैं, रही झटके में राक्षस पर आक्रमण ऐसे करने वाले हैं, तुरंत वो लोग प्रकट हो जाते हैं, शिव जी और पार्वती जी, और तब तक पानी फिर निकल जाता है। तो फिर वो भीमसेन का ये भाव देखकर शिव जी प्रसन्न हो जाते हैं, मतलब वरदान मांगो। तो वो कहते हैं कि मुझे ना इतनी भूख लगती है, इतनी भूख लगती है, तो कभी कभी मुझे खिलाने वाला ना मेरे साथ गति रख नहीं पाता है। मुझे आप रोटी बना रहे हो गरम गरम, मैं खाने को बैठा हूँ, हाँ, और मेरा स्पीड इतना है कि आप मुझे गरम गरम रोटी दे नहीं पा रहे हो। तो मुझे ऐसा एकदम ऐसा मेरा ऐसा एक स्वभाव है, जब मैं भोजन को बैठता हूँ ना, आप मुझे चाहे तो बोलो 15 मिनट के बाद बैठो चलेगा, लेकिन मैं एक बार बैठ गया ना, आप मुझे इंटरवल नहीं दे सकते बीच में, इंटरवल नॉट पॉसिबल, इट हैज़ टू कीप कमिंग, आई कैनॉट जस्ट। फिर मैं तैयार नहीं रहेगा तो फिर मैं डब्बा खोलूंगा, उसमें सेब खाऊंगा, चिवड़ा खाऊंगा, जो भी है केला खाऊंगा पीछे से निकाल के, ऐसा ब्रेक नहीं हो सकता बीच में। तो भीमसेन कहते हैं कि मैं जब खाता हूँ तो मेरा पेस कोई पकड़ नहीं सकता है, तो अक्सर मुझे परेशानी होती है, और फिर मैं ऐसा कुछ भी आटा वाटा खाने लगता हूँ तो फिर पेट में तकलीफ होती है मुझे। तो आप मुझे ऐसा वरदान दो कि मैं जो भी खाऊंगा ना वो हजम हो जाएगा, चलो वो कच्चा हो पक्का हो नहीं हो कुछ भी हो अन्न हो नहीं हो सब हजम हो जाएगा। तो इनका ये वरदान ऐसा अजीब वरदान है, वो देने के लिए भी शिव जी को इतनी खुशी होती है, डोंट वरी तथास्तु, और वो इतने प्रसन्न हो जाते हैं, वो कहते हैं कि और एक वरदान मांगो। तो बोले अभी क्या वरदान मांगो, अब एकादशी मतलब क्या होता है, वेर इज योर माइंड ऑन एकादशी, ऑन कृष्णा, ऑन द होली नेम, ऑन द पास्ट टाइम्स ऑफ द लॉर्ड, ऑन द रिमेम्बरेंस ऑफ द विजिट टू द होली प्लेसेस, ऐसा होता है क्या? उस दिन में जो आपको पसंद नहीं है वो भी खाना आ जाता है, तो आपने कभी वाम पसंद नहीं किया आज तक, नहीं चाहिए हमको, वो भी आपको लगता है कि वो भी कितना अच्छा लगता था, ऐसा मन में विचार आता है उस दिन। तो एकादशी का दिन है, दिन भर वही मेडिटेशन है कि आज मैं उपवास कर रहा हूँ। तो बोले दूसरा वरदान मांगो। तो फिर भीमसेन कहते हैं सोच के कि मुझे अगर मैंने फटाफट खाना खाया, समझो बाई चांस मुझे कुछ पेट में दर्द वर्द हो गया, कुछ तकलीफ हुई, कुछ ऐसा कुछ हो गया समझो कुछ खाने से, तो वो सारा तकलीफ शकुनी को होना चाहिए। खाता मैं रहूंगा, कष्ट उसको होना चाहिए। एक तो हजम करने का वरदान मांगा और तकलीफ हुआ ही, तो शिवजी महाराज उसको भी बहुत प्रेम से तथास्तु बोल देते हैं। और इस तरह से हमारे भीमसेन जी का पांडव निर्जला एकादशी संपन्न हो जाता है। हाँ, शकुनी का डायग्नोसिस कभी हुआ ही नहीं। बड़े बड़े वैद्य आए, बोले क्या हुआ तुझे, क्या खाया था तूने, बोले मैंने तो कुछ नहीं खाया, पेट क्यों बिगड़ा है मेरा। कभी कोई डायग्नोस नहीं कर पाया एंड तक, बोलता ना वो क्या बोलते हैं उसको इंग्लिश हमारे मेडिकल में बोलते हैं इडियोपैथिक, एक हमारा वर्ड है इडियोपैथिक, मतलब क्या, जिसका किसी को मालूम नहीं मतलब क्या है, क्या वो क्यों हो रहा है, उसको बोलते हैं इडियोपैथिक। ऐसा एक एलोपैथी इतना चालू साइंस है ना कि मतलब अरे कनिंग साइंस की आपको पता नहीं है वो, लेकिन वो एक अच्छा नाम देके रखते हैं उसको, जो पता नहीं है वो एक अलग नाम से मालूम है कि इडियोपैथिक नो कॉज नोन। वैसे जितने सारे वैद्य शकुनी के दरबार में आए उसको एग्जामिन करने के लिए, वो कभी उसको डायग्नोस नहीं कर पाए कि इसको क्या हो रहा है, इलाज किया होगा लेकिन डायग्नोस नहीं कर पाए कि क्यों हो रहा है। और समझा आपको मैं पूछूंगा कि मुझे पूछेंगे कि आपको इतना छाती में दर्द क्यों हो रहा है, तो वो पल्स देखेंगे, बोलेंगे कि आपको गैस बढ़ गया बहुत, तो वो पूछेंगे ना आपने कुछ बड़ा बड़ा खाया था क्या, ज़्यादा कुछ चने का आटे का कुछ खाया था क्या, तो पूछेंगे ना आपको कुछ। लेकिन जो मैं बोलूँगा कि मैं तो कल तो भोपले की सब्जी खाई थी, उससे तो वात नहीं बढ़ता है, तो वैद्य बोलेगा फिर इतना वात कैसे बढ़ गया आपको, छाती तक वो दर्द कर रहा है आपको जाके। मैं एक बार बरसाना आया कि मेनू तय करने के लिए कृष्णचरण प्रभु के होटल में गया था, और उस दिन मंदिर में भी कुछ प्रोग्राम था, कुछ शायद वो था क्या, वो क्या होता है पुष्प अभिषेक, उस दिन मैं उनके बोला कि उनके यहाँ जाएंगे डिस्कस करेंगे फिर वहाँ जाएंगे। तो उन्होंने मुझे बटाटे वटे खिलाए, वो मेरी बहुत पसंद की वस्तु है, तो मैंने जो ज़्यादा ही खाए उधर, और जब तक मैं उधर उत्सव में पहुँचा मेरे को दर्द होने लगा बहुत छाती में, तो सब लोग एकदम, मैं भी परेशान हो गया, रूम पे चला गया और वो रुकता ही नहीं था। फिर मैंने इसके से प्रभु को फ़ोन किया, सब लोग मुझे लेने आए, फिर मैं NM मेडिकल में गया, उधर ECG किया, बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, बाद में बोला ऐसे चीज नॉर्मल है, तो बोले क्या खाया था, तुमने कहा बटाटा वड़ा खाया था। तो मुझे भी समझ में आया कि हाँ यार बटाटा वड़ा से हो सकता है ये बात। तो वैसा डायग्नोसिस वो नहीं कर पाए शकुनी का कि उन्होंने कुछ तकलीफ वाला खाना खाया या बासी खाना खाया या पुराना खाना खाया है जो पसंद नहीं वो खाया, ऐसा कुछ नहीं था। एनी वेज, सो निर्जला एकादशी का वरदान नारद मुनि ने ये दिया है कि ये एकादशी का वरदान, एकादशी जो निर्जला करेंगे उनको साल भर में कोई एकादशी मिस हो गई होगी तो भी उसका पूर्ण हो जाएगा उसमें, और सब एकादशी करने का लाभ भी मिलेगा। सारी एकादशी की भी होंगी और नहीं भी की होंगी तो एकादशी निर्जला करने से सारी एकादशियां व्रत पालन करने का पूर्ण लाभ मिलेगा। पांडव निर्जला एकादशी ऐसा उसका नाम है, इसको भीमा एकादशी भी कहते हैं। और उसके अगले दिन, अभी कल के दिन, रघुनाथ दास गोस्वामी का दही चिड़ा उत्सव भी संपन्न होता है। हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच। सब लोग अच्छा, नहीं मैंने सुना नहीं इसको। अच्छा अच्छा हरे कृष्णा, थैंक यू वेरी मच।